नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। द टेम्स एंड हडसन मैनुअल ऑफ बुक बाइंडिंग आर्थर डब्ल्यू जॉनसन की पारंपरिक पुस्तक बांध कला पर केंद्रित तकनीकी मार्गदर्शिका है। यह उपन्यास या कला इतिहास की सामान्य पुस्तक नहीं, बल्कि किसी पुस्तक को मजबूत, उपयोगी और सुंदर आवरण देने की क्रमबद्ध कार्यपद्धति समझाने वाला मैनुअल है। जॉनसन ब्रिटेन के प्रमुख डिजाइनर बुकबाइंडरों में गिने जाते थे और पुस्तक में उनका लक्ष्य विद्यार्थी तथा कार्यरत कारीगर दोनों के लिए भरोसेमंद संदर्भ तैयार करना है। इसमें औजारों, सामग्री और कार्यस्थल से आरंभ करके एंड पेपर, सिलाई, वाउंडिंग, बैकिंग, किनारों की सज्जा, विभिन्न बाइंडिंग शैलियों और फिनिशिंग तक के चरण शामिल है। चित्र केवल सजावट नहीं है, वे उपकरणों और प्रक्रियाओं को पहचानने में मदद करते हैं तथा ऐतिहासिक और आधुनिक बाइंडिंग के नमूने भी दिखाते हैं। पुस्तक का केंद्रीय विचार है कि अच्छी बाइंडिंग उपयोगिता और सौंदर्य का संयुक्त परिणाम है। पुस्तक आसानी से खुले, सपाट टिके, लंबे समय तक चले और उसका रंग, चमड़ा या स्वर्ण अलंकरण उसके रूप को अर्थपूर्ण बनाए। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले औजार, सामग्री और कार्यस्थल को प्रक्रिया की बुनियाद मानना। जॉनसन की पद्धति में बुक बाइंडिंग किसी आवरण को चिपका देने भर का काम नहीं है। पुस्तक पहले उन उपकरणों, सामग्रियों और तैयारी संबंधी चुनावों पर ध्यान देती है जिनके बिना बाद के चरण अस्थिर हो सकते हैं। कागज, धागा, गोंद, बोर्ड, कपड़ा, चमड़ा और धातु उपकरणों की भूमिका अलग है, इसलिए उनका चयन केवल उपलब्धता से नहीं, पुस्तक के आकार, उपयोग और अपेक्षित दिखावन से जुड़ता है। यही दृष्टि शुरुआती कारीगर को यह समझने में सहायता देती है कि खराब परिणाम का कारण हर बार हाथ की सफाई नहीं होता, कभी सामग्री और संरचना का गलत मेल भी होता है। औजारों का चित्रात्मक परिचय विशेष उपयोगी है, क्योंकि तकनीकी शब्दों को केवल पढ़कर उनकी आकृति, पकड़ और प्रयोजन समझना कठिन हो सकता है। पुस्तक कार्य को चरणों में रखने का अनुशासन भी सिखाती है। काटने, मोड़ने, दबाने, सिलने और चिपकाने जैसी क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर है। यदि आरंभिक माप या दबाव असमान हो तो तैयार पुस्तक का खुलना, रीढ़ का आकार और कवर का बैठना प्रभावित होगा। इसीलिए यह भाग हस्तकौशल के साथ निरीक्षण की आदत विकसित करता है। आधुनिक त्वरित परियोजना मार्गदर्शिकाओं के विपरीत यहां तैयारी को वास्तविक निर्माण का अभिन्न चरण माना गया है। दूसरा, एंड पेपर और सिलाई से पाठखंड को एक टिकाऊ संरचना देना। पुस्तक के तकनीकी केंद्र में पाठखंड की तैयारी है, जिसमें एंड पेपर और सिलाई विशेष महत्व रखते हैं। एंड पेपर पुस्तक के भीतर के पन्नों और कवर के बीच संक्रमण बनाते हैं। वे पुस्तक को कवर से जोड़ने में सहायता करते हैं, पर साथ ही खुलने पर दिखाई देने वाला दृश्य क्षेत्र भी होते हैं, इसलिए उनका चुनाव संरचनात्मक और सौंदर्यात्मक दोनों निर्णय है। सिलाई का उद्देश्य पन्नों को केवल एक साथ रखना नहीं, बल्कि ऐसी रीढ़ बनाना है जो उपयोग के दबाव को संभाल सके। धागे की दिशा, सिलाई का क्रम और खंडों का सही संरेखण आगे की सारी बाइंडिंग की विश्वसनीयता तय करते हैं। जॉनसन की पारंपरिक पद्धति यह दिखाती है कि पुस्तक की मजबूती उसकी अदृश्य आंतरिक व्यवस्था से आती है। एक आकर्षक कवर भी उस पुस्तक को नहीं बचा सकता जिसकी सिलाई ढीली, असमान या गलत तनाव वाली हो। यह समझ संरक्षण और मरम्मत के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि टूटे कवर को बदलना और कमजोर पाठखंड को स्थिर करना अलग समस्याएं हैं। पुस्तक पाठक को धीमी, जांच आधारित कार्यशैली की ओर ले जाती है, जहां प्रत्येक खंड का संरेखण, धागे का तनाव और जोड़ की सफाई देखी जाती है। इस तरह सिलाई को सजावटी हस्तकला नहीं, पुस्तक के उपयोगी जीवन की इंजीनियरिंग के रूप में रखा गया है। तीसरा, राउंडिंग और बैकिंग से रीड के आकार तथा खुलने की क्षमता नियंत्रित करना। राउंडिंग और बैकिंग वे चरण हैं जिनसे बंधी हुई पुस्तक का परिचित रीड आकार विकसित होता है और कवर को बैठने के लिए आवश्यक संरचना मिलती है। जॉनसन इन्हें अलग तकनीकी क्रियाओं के रूप में प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि इनका परिणाम केवल बाहरी रूप में नहीं, पुस्तक के व्यवहार में भी दिखाई देता है। राउंडिंग से रीड को नियंत्रित वक्र दिया जाता है। बैकिंग उस आकार को अधिक स्थिर बनाती है और कवर बोर्डों के लिए किनारों पर स्थान तैयार करने में मदद करती है। यह कार्य बल, नमी, दबाव और सही सहारे के संतुलन की मांग करता है। बहुत कम या असमान काम से पुस्तक का आकार कमजोर रह सकता है, जबकि अत्यधिक बल पन्नों और सिलाई पर अनावश्यक तनाव डाल सकता है। इस भाग का व्यावहारिक पाठ यह है कि बाइंडिंग में रूप और कार्य को अलग नहीं किया जा सकता। गोल्ड रीड केवल परंपरागत दृश्य संकेत नहीं है, वह पन्नों की व्यवस्था, कवर की गति और दीर्घकालिक उपयोग से जुड़ी संरचनात्मक पसंद है। पुस्तक इस कारण से क्रमिक कार्य की महत्ता स्पष्ट करती है। सिलाई के बाद की रीड को बिना समझे सीधे कवरिंग की ओर बढ़ना सही समाधान होगा। जॉनसन का विवरण पाठक को यह देखने का तरीका देता है कि किसी पुस्तक का बाहरी ढांचा उसके भीतर किए गए मापे हुए हस्तकार्य का परिणाम है। चौथा, किनारों की सज्जा, रंग और स्वर्ण कार्य में उपयोगिता के साथ सौंदर्य। द डेम्स एंड हर्सन मैनुअल ऑफ बुक बाइंडिंग का एक विशिष्ट पक्ष यह है कि वह पुस्तक बांध को केवल संरक्षण तकनीक तक सीमित नहीं रखती। किनारों की सज्जा, रंगों का मेल और स्वर्ण कार्य जैसे विषय बताते हैं कि तैयार पुस्तक का सौंदर्य भी विचारपूर्वक बनाया जाता है। किनारों की प्रक्रिया में सफाई और समतलता मूल शर्तें हैं। सज्जा तभी प्रभावी होती है जब नीचे की सतह ठीक तैयार की गई हो। स्वर्ण अलंकरण की चमक को पुस्तक एक अलग आकर्षण मानती है, लेकिन उसका मूल्य केवल चमकीले प्रभाव में नहीं है। वह डिजाइन सामग्री और पुस्तक के अनुपात के साथ संतुलित होने पर ही उपयुक्त लगता है। रंगों के बारे में भी निहित सिद्धांत यही है कि चयन पुस्तक की संरचना को ढकने के बजाय उसके रूप को स्पष्ट करे। इस दृष्टिकोण से सजावट अंतिम क्षण का अतिरिक्त काम नहीं, बल्कि आरंभ से सोचे गए डिजाइन का विस्तार है। चित्रों में ऐतिहासिक और आधुनिक बाइंडर कला के उदाहरण शामिल होने से पाठक को शिल्प परंपरा की व्यापक दृश्य भाषा का बोध मिलता है। फिर भी पुस्तक का व्यावहारिक आधार बना रहता है। सज्जा से पहले मजबूत सिलाई, सही रीड और ठीक बैठा कवर आवश्यक है। यह क्रम उस भ्रम को दूर करता है कि सुंदर बाइंडिंग केवल अलंकरण का नाम है। जॉनसन के लिए सुंदरता उपयोग अनुपात और सामग्री पर नियंत्रण से निकलती है। अंत में विभिन्न बाइंडिंग शैलियां और फिनिशिंग में निर्णय की व्यावहारिक सीमा। पुस्तक अलग अलग बाइंडिंग शैलियों और फिनिशिंग के सूक्ष्म कामों का परिचय देती है, जिससे पाठक को यह समझ आता है कि हर पुस्तक के लिए एक ही समाधान उपयुक्त नहीं होता। पुस्तक का आकार, पाठखंड की मोटाई, अपेक्षित उपयोग, कवर सामग्री और वांछित रूप, इन सभी के आधार पर संरचनात्मक विकल्प बदलते हैं। फिनिशिंग वह अवस्था है जहां कवरिंग के बाद किनारों, जोड़ों और सजावटी विवरणों की गुणवत्ता जांची जाती है। यह सटीकता विशेष मायने रखती है, क्योंकि अंतिम सतह पर छोटी असमानताएं भी स्पष्ट दिखती है। जॉनसन का योगदान यह है कि वे इन निर्णयों को कारीगर की आदत और अनुक्रम से जोड़ते हैं, न कि किसी एक सार्वभौमिक नुस्खे से। पुस्तक पारंपरिक पश्चिमी बुकबाइंडिंग की भाषा और तकनीकों पर केंद्रित है, इसलिए इसे सभी वैश्विक बाइंडिंग परंपराओं या समकालीन वैकल्पिक शैलियों का पूर्ण सर्वेक्षण मानना सही नहीं होगा। कुछ पाठकों को इसकी भाषा सघन और अध्ययनशील लग सकती है, पर यही सघनता इसे त्वरित परियोजना पुस्तक से अधिक गंभीर संदर्भ बनाती है। पाठक को केवल क्या करना है यह नहीं बताया जाता, बल्कि चरणों के संबंध को समझने का आधार मिलता है। फिनिशिंग का वास्तविक अर्थ इसी समन्वय में है, जहां मजबूत संरचना, साफ कारीगरी और संयमित डिजाइन एक ही वस्तु में मिलते हैं। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन पाठकों के लिए सबसे उपयोगी है जो पारंपरिक पश्चिमी बुकबाइंडिंग को सतही शौक की बजाय गंभीर हस्तकौशल के रूप में सीखना चाहते हैं। आरंभिक विद्यार्थी इससे उपकरणों, सामग्री और कार्य के अनुक्रम की ठोस समझ बना सकते हैं। कुछ चरणों में अतिरिक्त अभ्यास या अनुभवी बाइंडर का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन फिर भी आवश्यक होगा। मध्यवर्ती कारीगर इसे किसी विशेष प्रक्रिया जैसे सिलाई, रीड की तैयारी या फिनिशिंग पर लौटकर देखने योग्य संदर्भ के रूप में उपयोग कर सकते हैं। डिजाइन, पुस्तक कला और पुस्तक संरक्षण में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए भी इसका महत्व है, क्योंकि यह स्पष्ट करती है कि किसी बंधी पुस्तक का दृश्य रूप उसकी आंतरिक संरचना से कैसे जुड़ता है। इसकी भाषा और तकनीकी घनत्व साधारण त्वरित परियोजना पुस्तकों की तुलना में अधिक धैर्य मांगते हैं। यही इसकी सीमा भी है और शक्ति भी। यह पाठक को कम सामग्री में तेजी से परिणाम पाने का आश्वासन नहीं देती। इसके बजाय यह माप, क्रम, सामग्री की अनुकूलता और साफ निष्पादन पर आधारित परंपरागत मानक प्रस्तुत करती है। अन्य परिचयात्मक पुस्तकों के मुकाबले इसका अंतर इसके व्यापक तकनीकी दायरे में है। उपकरणों से लेकर एंड पेपर, सिलाई, राउंडिंग, बैकिंग, किनारों की सज्जा और स्वर्ण अलंकरण तक, यह बाइंडिंग को अलग अलग युक्तियों का संग्रह नहीं मानती। आर्थर जॉनसन इसे एक समन्वित प्रक्रिया के रूप में दिखाते हैं, जिसमें टिकाऊपन, खुलने की सुविधा और सौंदर्य एक दूसरे के पूरक है। इसी कारण यह अभ्यास के साथ बार बार पढ़े जाने वाला मैनुअल है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं आर्थर जॉनसन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।